कृति गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी। उसके कदम तेज थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने भीतर उबलते तूफान को दबाने की कोशिश कर रही हो। सानवी और रिया दोनों पर ही उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, पूरी ईमानदारी से। हालात को संभालने के लिए उसने खुद को बदला था। वो पहले वाली कृति नहीं रही थी, जो हर बात पर पलटकर जवाब देती थी या जिम्मेदारी से भाग जाती थी। इस बार उसे सचमुच पछतावा था। बबलू को पकड़वाने का फैसला भी उसी का था। अगर वो ऐसा ना करती तो बबलू आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था, ये बात वो अच्छे से समझती थी। लेकिन जिस काम के लिए उसे शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उसी बात पर सानवी और रिया दोनों उस पर भड़क गई थीं। किसी ने उसकी नीयत नहीं देखी, किसी ने उसके बदले हुए रवैये को नहीं समझा। दिल भारी था, दिमाग थका हुआ। कृति सीधे घर गई। घर पहुंचते ही उसने बिना किसी से बात किए अपना बैग निकाल लिया। कपड़े पैक करते वक्त उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, गुस्से से नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे से। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो ना तो रिया के साथ रहेगी और ना ही सानवी के पास जाएगी। अब और सफाई देने की ताकत उसमें नहीं बची थी। उसका मूड बेहद खराब था। उधर सानवी का मूड भी कुछ कम खराब नहीं था, लेकिन उसका गुस्सा कृति की वजह से नहीं था, असल वजह आर्यन था। आर्यन का हर बात में दखल देना, हर फैसले पर अपनी राय थोपना, ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ये एहसास खटक रहा था कि आर्यन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सानवी साफ थी अपने मन में, चाहे जो भी हो वो अपने करियर के फैसले खुद लेना चाहती थी। अपने रेस्टोरेंट के सीजन, मेन्यू, एक्सपेंशन, सब कुछ अपनी मर्जी से, किसी की परछाई में काम करना उसे मंजूर नहीं था। इसी गुस्से और उलझन में उसने ना तो कृति को फोन किया और ना ही आर्यन को। उसने खुद को काम में झोंक दिया। रेस्टोरेंट में देर रात तक रुकी रही। कस्टमर आते रहे, जाते रहे, ऑर्डर चलते रहे, किचन की आवाजें गूंजती रहीं। सानवी बाहर से पूरी तरह प्रोफेशनल दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी उसी तरह बिखरी हुई थी जैसे कृति। फर्क बस इतना था, कृति चुपचाप दूर जा रही थी और सानवी खुद को साबित करने में और गहराई तक डूबती जा रही थी। रेस्टोरेंट बंद करने के बाद सानवी सीधे घर पहुंची ही थी। जूते उतारते समय उसके पैर अब भी दर्द कर रहे थे और दिमाग दिन भर की भागदौड़ से भरा हुआ था। वो सोफे पर बैठने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर आर्यन का नाम चमक रहा था। उसने एक पल को फोन देखने के बाद कॉल उठा ली। तुम्हें याद है ना, आज मेरी कंपनी की तरफ से जो एग्जीबिशन लगी है, आर्ट की एग्जीबिशन, आर्यन की आवाज में जल्दी थी। इंद्र ने जो अरेंजमेंट किया है उसमें तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हारे ही होना, तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने पहुंच रहा हूँ। सानवी कुछ सेकंड तक चुप रही। असल में आर्यन ने उसे पहले बताया था, लेकिन वो पूरी तरह भूल चुकी थी। और सच तो ये था कि इस वक्त उसका कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्या? सानवी के मुंह से अनायास निकल गया। उसके भीतर का गुस्सा फिर से जाग उठा। पूरे दिन की थकान, रेस्टोरेंट की टेंशन और आर्यन का हर जगह दखल, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। नहीं, मैं नहीं आ रही, उसने साफ और ठंडे लहजे में कहा। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी छा गई। सानवी का गुस्सा आर्यन पर था, और इस बार वजह सिर्फ एग्जीबिशन नहीं थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अब रेस्टोरेंट के वेटर के इंटरव्यू तक आर्यन लेना चाहता था। प्लीज सानवी, तुम ऐसा मत करो, आर्यन ने नरमी लाने की कोशिश की। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए निकल रहा हूँ, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। आर्यन सच में चाहता था कि सानवी उसके साथ जाए। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, कई बिजनेस पार्टनर वहां मौजूद होने वाले थे और सानवी की मौजूदगी उसके लिए मायने रखती थी। लेकिन सानवी अब किसी की मजबूरी बनकर कहीं नहीं जाना चाहती थी। आप सीधे होटल चले जाइए, उसने दृढ़ता से कहा। कोई अच्छा सा बहाना बना दीजिए, मुझे नहीं आना, इतना कहकर उसने कॉल काट दी। फोन कटते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सानवी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लग रहा था जैसे कोई लगातार उसकी सीमाएं लांघ रहा हो और वो अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उधर आर्यन ने फोन कटने के बाद ठंडी सांस ली। उसने कुछ सेकंड तक मोबाइल हाथ में पकड़े रखा, फिर धीरे से नीचे रख दिया। चलो, उसने ड्राइवर से कहा। कार आगे बढ़ गई होटल की ओर, जहां हॉल में आर्ट की एग्जीबिशन लगी हुई थी। कृति गुस्से में घर से बाहर निकल गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वो अपनी दोस्त सान के पास चली जाएगी। उसे लगा था कि वहीं जाकर वो खुद को थोड़ा संभाल पाएगी, कम से कम किसी अपने के सामने दिल का बोझ तो हल्का कर सकेगी। लेकिन जब वो सना के घर पहुंची तो उसे पता चला कि पूरी फैमिली शहर से बाहर गई हुई है। ये सुनकर उसके भीतर की उम्मीद जैसे एक पल में टूट गई। उसने वहीं खड़े खड़े एक और दोस्त को फोन लगाया, फिर दूसरे को, लेकिन हालात जैसे उसके खिलाफ ही थे। कोई भी घर पर नहीं था, कोई बाहर था, कोई किसी काम में बिजी। हर कॉल के साथ उसका मन और भारी होता चला गया। आखिरकार थक हार कर वो एक होटल में जाकर बैठ गई। लॉडी की चमकदार लाइट्स और लोगों की हलचल के बीच वो खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। बस इतना तय था कि वो वापस ना तो रिया के पास जाएगी और ना ही सानवी के पास। गुस्से में ही सही, लेकिन ये फैसला उसने पूरी मजबूती से कर लिया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी ने उसे मनाने के लिए फोन तक नहीं किया था, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। वो मोबाइल को बार बार देखती रही, जैसे उम्मीद हो कि अब फोन बजेगा,
लेकिन स्क्रीन खामोश थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस वक्त उसकी जिंदगी। कृति ने धीरे से आंखें बंद की। गुस्सा अब धीरे धीरे एक चुपती हुई उदासी में बदल रहा था और उसे पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन कितना भारी हो सकता है। जैसे ही आर्यन एग्जीबिशन हॉल में पहुंचा, चारों तरफ रोशनी, महंगे परफ्यूम की खुशबू और धीमी म्यूजिक की आवाज फैली हुई थी। ये पूरा इवेंट इंद्र ने अरेंज किया था। अब वो आर्यन की कंपनी ज्वाइन कर चुका था, इसलिए सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। आर्यन को देखते ही इंद्र उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नजर सबसे पहले आर्यन के साथ आई खाली जगह पर गई। तो तुम अकेले आए हो? इंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सानवी कहाँ है? आर्यन ने बिना झिझके जवाब दिया। वो थोड़ी बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ पाई। इंद्र ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा शक साफ झलक रहा था। अच्छा, वो थोड़ा रुक कर बोला, कहीं तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? मेरा मतलब है कोई बहस वगैरह? फिर हल्की हंसी के साथ उसने जोड़ दिया, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ आर्यन, तुम अक्सर अपनी ही करते हो। आर्यन के चेहरे पर झुंझलाहट की एक हल्की लकीर उभर आई। कमाल करते हो, उसने कहा, अभी हमारी शादी को कितने दिन ही हुए हैं और तुम ऐसी बातें पूछ रहे हो। असल में इंद्र को उनकी शादी को लेकर पहले से ही शक था। जिस तरह से ये शादी हुई थी उसमें कुछ तो ऐसा था जो उसे नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो अपनी शंका को जाहिर नहीं करना चाहता था। इसी दौरान विक्रांत और जैसिका अंदर से निकल कर आए। दोनों की नजर आर्यन पर पड़ी और उन्होंने औपचारिक हेलो कहा। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जो टकराव चल रहा था वो अब तक खुलकर सामने नहीं आया था। उनकी लड़ाइयां अभी पीठ पीछे ही चल रही थी। कोई भी इस वक्त पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुआ था। विक्रांत ने आर्यन की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है, आपकी मिसेज नहीं आई? आर्यन जवाब देने ही वाला था कि जैसिका बीच में बोल पड़ी। उसकी आवाज में हल्का सा तंज था। मुझे लगता है कि ऐसे हाई क्लास प्रोग्राम उसके लिए थोड़े अजीब होंगे, उसने सानवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आदत भी तो नहीं है ना उसे इस तरह की जगहों की, उसके शब्द हवा में तैरते रहे। आर्यन ने जबड़े बींच लिए।
उसे एहसास था ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि सानवी की हैसियत और उसके बैकग्राउंड पर किया गया सीधा हमला था। और ये एग्जीबिशन, जो बाहर से कला और संस्कृति का उत्सव लग रही थी, भीतर ही भीतर रिश्तों की दरारें और गहरी कर रही थी।